11 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लखनऊ की रामलीला में हिस्सा लिया। आतंकवाद के खिलाफ बोला जबरदस्त हमला।
श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं।
आपकी मुलाकात कराएंगे फोर्ब्स अमीरों की सूची में शामिल आचार्य बालकृष्ण से।
मल्टीनेशनल्स की जो पॉलिसियां होती हैं, उनका जो लक्ष्य होता है वह अपने लिए होता है, अपने वेल्थ के लिए होता है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है।
इंदौर टेस्ट भी भारत के नाम न्यूजीलैंड से सीरीज 3-0 से जीती। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में दशहरे के मौके पर रावण दहन में हिस्सा लिया। लखनऊ के ऐशबाग में हुए समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 125 करोड़ देशवासी एक होकर आतंकवादियों की हर हरकतों का ध्यान रखे, चौकन्ने रहे, तो आतंकवादियों का सफल होना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है। विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उन्हें जड़ से हटाने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं अब तो उन्हें भी बख्शा नहीं जा सकता है। सैमसंग का कहना है कि वो सुरक्षा को देखते हुए गैलेक्सी नोट 7 फोन का उत्पादन स्थायी तौर पर रोक रहा है। इससे पहले सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 खरीद चुके लोगों से आग्रह किया कि वे अपना स्मार्टफोन तब तक बंद रखें जब तक कि कंपनी बदले गए डिवाइस में आग लगने की खबरों की जांच ना कर ले। साथ ही दक्षिण कोरियाई कंपनी ने यह भी कहा कि वो इस फोन की बिक्री बंद कर देगा। कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा उसकी शीर्ष प्राथमिकता है और वो पैदा हुए हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही है। सैमसंग ने बैटरी में धमाके की शिकायतों के बाद सितंबर में 25 लाख फोन वापस मंगा लिए थे। कोरिया के एक नागरिक किम इन यंग का कहना था, मुझे लगता है कि सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 का बिक्री रोकने का फैसला भी उनकी ब्रांड की छवि ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि नए स्मार्टफोन आने से भी ऐसा हो पाएगा। ये थी कोरिया के एक नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते होने वाले फ्रांस के दौरे को रद्द कर दिया है। उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि पुतिन ने यह फैसला उस योजना के खत्म होने के बाद लिया जिसमें उन्हें राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलां के साथ रूस के एक चर्च और प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। फ्रांस के अधिकारियों का कहना था कि ओलां चाहते थे कि जो भी बैठक होती है वो सीरिया को लेकर होने वाली बातचीत पर ही सीमित रहनी चाहिए। शनिवार को रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के उस प्रस्ताव को वीटो किया था जिसमें एलेप्पो पर रूस समर्थित हवाई कार्रवाई को खत्म करने की बात कही गई थी। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार रूस के लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में एलेप्पो में भारी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। जमीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं और विद्रोही लड़ाकुओं का कहना है कि इस गोलीबारी का असर बुस्तान अल कसर जिले पर हुआ है। सीरिया के अलग अलग भागों में हिंसा होने की खबरें हैं। वहीं एक IS के चरमपंथी द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले लखनऊ में दशहरे के मौके पर रावण दहन में हिस्सा लिया। लखनऊ के ऐशबाग में होने वाली सदियों पुरानी रामलीला में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। ऐशबाग के इस रावण दहन कार्यक्रम में पहली बार देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं, इसलिए इस पर राजनीतिक दलों ने सवाल भी उठाए हैं। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
दिल्ली की रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम छोड़कर नरेंद्र मोदी लखनऊ में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। ऐशबाग में सदियों पुरानी रामलीला में रावण दहन का यह पहला कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। जाहिर है आयोजकों समेत तमाम लोगों में खुशी और उत्साह दोनों था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण से लोगों का उत्साह बढ़ाया।
जय श्री राम,
जय जय श्री राम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐशबाग की इस रामलीला की तुलना लोकमान्य तिलक के गणेश उत्सव से की।
मैं इस समिति का इसलिए आभारी हूं कि जैसे लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक उत्सव बना करके सामाजिक चेतना जगाने के लिए एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया, आपने भी इस रामलीला के मंचन को सिर्फ पुरानी चीजों को भक्ति भाव से याद करने तक सीमित नहीं रखा, लेकिन आपने हर रामलीला के समय समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, ऐसी कोई न कोई बुराइयां या समाज में जो कोई अच्छाई उभारनी है, उस अच्छाई को पर केंद्रित करते हुए आपने इस रामलीला के मंचन की परंपरा खड़ी की है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की जमकर चर्चा की, साथ में ये भी उल्लेख किया कि भारत बुद्ध की धरती है।
आज से 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था तो विश्व के गले नहीं उतरता था, लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद। श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत किया।
बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं। शिखर पर जो होलसेल भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस होलसेल भ्रष्टाचार को शिखर पर समाप्त करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है, इसलिए आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं।
राजनाथ सिंह सोमवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे और ऐशबाग मैदान में इंतजामों और सुरक्षा का भी जायजा लिया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे। ऐशबाग की रामलीला 4 सदी से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। ऐशबाग की रामलीला लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का भी उदाहरण पेश करता है, जहां सड़क के एक ओर रामलीला मैदान है तो दूसरी ओर ईदगाह। रामलीला की आयोजन समिति के प्रमुख और लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि आजादी के बाद से हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रावण दहन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर राजनीतिक दलों ने सवाल भी उठाए हैं। विपक्षी दलों के इस सवाल को इससे भी बल मिलता है कि प्रधानमंत्री पिछले 2 साल से इस कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में। आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने माना कि मौजूदा दौर में बड़े पैमाने पर जाति भेद कायम है और इसे समूल नष्ट करने की जरूरत है। विजयादशमी के मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बीबीसी ने इस मुद्दे पर कुछ स्वयंसेवकों से भी बात की। संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
आज भी भारत के कई राज्यों के कई गांवों में जाति भेद का पालन हो रहा है। आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत ने एक सर्वेक्षण के नतीजों के हवाले से यह बात मंगलवार को कही।
संघ भी ये चाहता नहीं कि संघ समाज में एक अलग संगठन बना रहे, संघ चाहता है सारे समाज में संघ हो। संघ के स्वयंसेवक सिंहत्व की अनुभूति देते हैं, किसी ने दिया मैंने लिया ऐसा नहीं, मैंने अपनी जितनी शक्ति थी उतना पुरुषार्थ किया, उसमें समाज के सद्भावी लोग मेरे साथ आ गए, अब मैं लेने वाला नहीं रहा, अब मैं देने वाला बन गया। ये अनुभूति संघ जहाँ सेवा करता है वहाँ मिलती।
जाति भेद के मुद्दे पर पिछले कुछ वर्षों से संघ की ओर से सामाजिक समरसता मंच के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विजयादशमी रैली में इसका जिक्र भी होने लगा है। जाति भेद के मुद्दे पर संघ कितना गंभीर है, इस सवाल पर एक युवा स्वयंसेवक सर्वे लोहकरे से हमने बात की।
कभी मुझे शाखा में किसी ने मेरी जात के बारे में पूछा नहीं, इसलिए यानी ऐसा कभी हुआ नहीं कि तुम किस जात के हो या फिर किस धर्म के हो, ऐसा कभी मुझे पूछने में आया नहीं। कभी शाखा में सबको समान अधिकार है और सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है।
मंगलवार के ही दिन कुछ शहरों में दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। जाति भेद से लड़ाई की बात पर आखिर दलित विश्वास क्यों नहीं करते, इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए स्वयंसेवक दयाशंकर सिंह ने बताया।
मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ और संघ समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, सबको लेके चलने का काम संघ करता है। जो आपने सवाल किया कि आज के दिन में बहुत से लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, सर हमने उसको बहुत नज़दीकी से देखा हुआ, अभी हमारा संगठन उनके अंदर नहीं पहुँच पाया है। हकीकत यह है अभी हम उनको कुछ लोग हमारे अछूत ही मानते हैं।
महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा मार्च भी निकल रहे हैं और उनकी मांगों को लेकर दलितों में बेचैनी देखी जा सकती है। हमने मराठा समाज के एक स्वयंसेवक रवि डंभारे से भी बात की।
जैसा कि अभी जो भाषण में आया है कि हर गांव में एक ही कुआं चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, स्मशान भूमि एक ही चाहिए, वैसा ही जो मंदिर भी एक ही चाहिए, तभी तो अपन एक साथ ये होंगे। और ये जो चीज़ें चल रही है ये सिर्फ नफरत फैलाने की चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड चीज़ें ये नहीं होंगी।
दरअसल नागपुर की दीक्षा भूमि पर इसी दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी मनाया जाता है। यहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था, लिहाजा दीक्षा भूमि पर विजयादशमी के ही दिन हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से हुजूम उमड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन करने और उन्हें याद करने लाखों दलित इकट्ठा हुए हैं। बीबीसी हिंदी के लिए नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत प्रशासित कश्मीर की एक सरकारी इमारत में छिपे चरमपंथियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान पिछले 36 घंटों से जारी है। कल सुबह से जारी मुठभेड़ में पुलिस और सेना के दो लोग घायल हो गए हैं। इस बीच दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर बम फेंका जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और 4 नागरिक घायल हो गए। घाटी में जारी अलगाववादी आंदोलन के कारण पहले ही जनजीवन ठप है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव जारी है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
श्रीनगर से दक्षिण की तरफ सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में छिपे चरमपंथियों को खदेड़ने के लिए कल सुबह से ही सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस का साझा अभियान जारी है। इस वर्ष फरवरी में भी ये इंस्टीट्यूट चरमपंथियों के हमले का निशाना बना था और 48 घंटों तक चले सैनिक ऑपरेशन में मेन बिल्डिंग तबाह हो गई थी। उस वक्त सेना और पुलिस के कई कर्मचारी, एक नागरिक और 4 हमलावर मारे गए थे। पुलिस का कहना है कि हॉस्टल की इमारत पर आज सुबह रॉकेट और मार्टर शेल फायर किए गए, लेकिन चरमपंथी एम्यूनिशन बचाने के लिए खास प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस के महानिदेशक के राजेंद्र का कहना है कि सुरक्षा बल जानी नुकसान बचाने के लिए धीमी गति से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।
इट इज अ डेस्परेट एक्ट, वी हैव बीन, यू हैव सीन ऑफ लेट द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन गेटिंग वेरी गुड सक्सेसेस।
मिस्टर राजेंद्रा ने बताया कि चरमपंथियों के विरुद्ध सफल ऑपरेशनों के बाद अब चरमपंथी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और ऐसे हमले करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। सेना ने अभी तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इमारत के अंदर घुसने का अभी तक प्रयास भी नहीं किया गया। इस बीच दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में अज्ञात चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों की एक गश्ती पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और 3 महिलाओं समेत 4 नागरिक घायल हो गए। हमले के बाद शोपियान में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में 250 चरमपंथी सक्रिय हैं जो 29 सितंबर को पाकिस्तानी कश्मीर में भारतीय सेना की कथित सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की ताक में हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में जंग के बादल और दूसरी तरफ घाटी में राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथियों के हमले, ऐसे में घाटी के युवा भविष्य को कैसे देखते हैं? कुछ युवाओं के विचार।
जो इंडिया और पाकिस्तान है वो कश्मीर के इशू के लिए वो सीरियस नहीं है, तो अगर वो सीरियस हो जाते थोड़े से तो ये हालात, ये जो एनकाउंटर्स जो चल रहे हैं ये कम हो सकते हैं, जो भी ये खून खराब आए वो कम हो सकता है।
पाकिस्तान बहुत ज्यादा उसे ऑफर कर रहा है, बातचीत ऑफर कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान तो बेसिक इशूज को एक्नोलेज भी नहीं कर रहा, लेट अलोन कि वो कैसे सॉल्व इशूज कर। हिंदुस्तान जो गुरेज कर रहा है बातचीत से, वो सारी सूरत हाल को, वो सारे बरसगीर में वो अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा चैलेंज उबर कर सामने आ रहा है।
आए रोज रात की तहरीकी में लोगों के घरों में चढ़ जाते हैं सीआरपीएफ एहलकार, पुलिस एहलकार, मर्द और जन की पिटाई की जाती है, खवातीन का पासो लिहाज नहीं रखा जा रहा है। इन हालात में एक नौजवान क्या करे, उसके पास बंदूक उठाने के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं।
गौरतलब है घाटी में अलगाववादी आंदोलन का 4th महीना चल रहा है। बैंक, शिक्षक संस्थान, पेट्रोल पंप और व्यापारी गतिविधियां ठप हैं। प्रशासन ने नवंबर में परीक्षाओं की घोषणा की है, लेकिन छात्रों ने सरकार के विरुद्ध मोर्चा बांधकर परीक्षाओं का बॉयकॉट करने की धमकी दी है।
بیلٹ لگا ہے, جن کو گولیاں لگی ہے, جب تک وہ ہمارے ساتھ ایگزام نہیں دیں گے ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ بلڈ اینڈ انک کین ناٹ فلو ٹوگیدر.
اس بیچ شیعہ ناگرکوں کو بھی پرشاسن نے محرم کے جلوس نکالنے کی انومتی نہیں دی. کئی جگہوں پر شیعہ عزاداروں اور پولیس کے بیچ جھڑپیں ہوئیں. پرشاسن کا کہنا ہے کہ جلسے اور جلوسوں کی انومتی دینے سے استھتی بگڑ سکتی ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
سنسنی نہیں, وشوسنیتا کا دم.
بی بی سی ہندی.
یہ بی بی سی ہے, آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ. اب لیتے ہیں ایک انتراشٹری وشے. روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے اپنے اگلے ہفتے کے نردھارت فرانس دورے کو ٹال دیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ فرانس کے راشٹرپتی فرانسوا اولاں کے اس بات پر زور ڈالنے کے بعد لیا کہ دونوں دیشوں کے راشٹرادھکشوں کے بیچ اس ملاقات میں چرچا سیریا تک ہی سیمت رہنی چاہیے. ادھر روس کی سینا نے سیریا کے الیپو علاقے میں پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں. بی بی سی سنواداتاؤں کا بھیجا بیورا سنا رہے ہیں روہت جوشی.
روسی راشٹرپتی کے پروکتا دیمیتری پیسکوو نے یہ جانکاری دی ہے کہ ولادیمیر پوتین نے اگلے ہفتے فرانس کے اپنے نردھارت دورے کو ٹال دیا ہے. اس دورے میں انہیں راشٹرپتی فرانسوا اولاند کے ساتھ ایک روسی آرتھوڈاکس چرچ کے ادگھاٹن سماروہ میں شامل ہونا تھا. پیسکوو نے کہا کہ پوتین یہ دورہ تب کریں گے جب اس دورے کے لیے راشٹرپتی اولاند زیادہ سہج ہوں گے. سوموار کو راشٹرپتی اولاند نے اس بات پر سوال اٹھائے تھے کہ الیپو میں روسی ہوائی حملوں کے بیچ کیا پوتین کی یہ یاترا فائدے مند ہو پائے گی. راشٹرپتی اولاند نے اسٹراسبرگ میں یوروپی پریشد کی سنسد کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنی بات دوہرائی ہے اور اس بات پر زور ڈالا ہے کہ دونوں دیشوں کے راشٹرادھیکشوں کے بیچ اس ملاقات میں چرچا سیریا تک ہی سیمت رہنی چاہیے. میں اس یاترا سے کیول تبھی سہمت ہوں جبکہ سیریا پر بات ہو پاتی ہے, صرف سیریا پر. اور میں نے راشٹرپتی پوتین کو یہ سپشٹ کر دیا تھا کہ اگر وہ پیرس آئے تو میں انہیں اتسو بھرے سماروہ میں ملنے کے لیے نہیں بلکہ سیریا پر چرچا کے لیے ملنے کی تیاری کروں گا. انہوں نے یاترا کو رد کرنا زیادہ بہتر سمجھا ہے. ابھی ان سے ملاقات کے اور بھی موقع آئیں گے. فرانس کے راشٹرپتی فرانسوا اولاند کے شبد. راشٹرپتی اولاند نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ روسی راشٹرپتی سے ملنے کو تیار ہیں, لیکن کیول تبھی جب پوتین سیریا کے مسئلے پر ایمانداری درشائیں. انہوں نے کہا کہ ہوائی حملوں کے شکار سیریا کے ناگرکوں کے لیے یہ بے حد اہم ہے. یہی بات ہے جس وجہ سے روس کے ساتھ بات چیت کرنا بے حد ضروری ہے, لیکن یہ چرچا ٹھوس اور ایماندار ہونی چاہیے, ورنہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ محض دکھاوا ہوگا. اس لیے راشٹرپتی پوتین سے ملنے کی اچھا میں بار بار دہراتا رہا ہوں. جب بھی پوتین ضروری سمجھیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. شنیوار کو سیریا کے الیپو میں روس سمرتھت ہوائی حملوں کو ترنت روکنے کے لیے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں لائے گئے فرانس کے ایک پرستاؤ کو روس نے ویٹو کا استعمال کر روک دیا تھا. ادھر سیریا سے آ رہی خبروں کے مطابق روسی جنگی جہازوں نے ودروہیوں کے قبضے والے الیپو پرانت میں ہوائی حملوں کو دوبارہ سے شروع کر دیا ہے. کچھ ایکٹیوسٹوں اور ودروہی لڑاکوں کا کہنا ہے کہ ہوائی حملے بستان القصاشر کہے جانے والے علاقے میں ہوئے ہیں. سیریا کے دوسرے حصوں میں بھی ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی ہیں. خبر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ سے جڑے ایک آتم گھاتی بم حملہور نے دھماکے کر کم سے کم 10 لوگوں کو مار ڈالا ہے. یہ گھٹنا مانبت سے اتر کی اور پاس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گھٹی ہے, جہاں سے اگست میں اسلامک اسٹیٹ کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. پچھلے مہینے امریکہ اور روس کی مدھیستھتا والے یدھ ویرام کے ختم ہونے کے بعد سے الیپو کے پوروی علاقے میں بھاری بمباری ہو رہی ہے. اس کے بعد سے یدھ ویرام کے لیے ہو رہی ساری کوششوں سے کچھ حل نہیں نکل پایا ہے. سنیکت راشٹر نے چیتاونی دی ہے کہ پوروی الیپو میں اب بھی 275,000 کے آس پاس لوگ موجود ہیں اور اگلے 2 مہینوں کے اندر یہ پورا علاقہ تباہ ہو سکتا ہے.
روس کے راشٹرپتی پوتین نے اپنا فرانس کا دورہ رد کیا. آچاریہ بال کرشن کا نام حال میں فوربس پترکا نے بھارت کے اعلی 50 امیروں کی سوچی میں رکھا ہے. آچاریہ بال کرشن یوگ گرو سوامی رام دیو کے سہیوگی اور پتنجلی آیوروید لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. 44 سال کے آچاریہ بال کرشن سادھارن پرشٹھ بھومی سے آتے ہیں. آج ان کی کمپنی شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ سے لے کر نوڈلز تک سب کچھ بناتی ہے. बीबीसी की नेपाली सेवा के हमारे सहयोगी फणींद्र दहल ने आचार्य बालकृष्ण से तमाम मुद्दों पर बात की और सबसे पहले फोर्ब्स की अमीरों की सूची में नाम शामिल होने को लेकर सवाल किया।
पतंजलि कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और ये बड़ी विचित्र बात है और खुशी की बात है देशवासियों के लिए, क्योंकि जब तक वो लिस्टेड नहीं होती है कंपनी, इस तरह का वैल्यूएशन के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और यदि पतंजलि का मूल्यांकन हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। यह देश के लोगों का विश्वास है, उनका भरोसा है, उनका प्यार है, और उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये पतंजलि यह आपकी है।
काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में आता है कि आप कभी विदा नहीं लेते हैं, ये सत्य है?
मैं प्रतिदिन काम करता हूँ क्योंकि मुझे काम के अलावा कुछ करना आता भी नहीं है और मेरे पास और कुछ करने के लिए काम भी नहीं है, इसीलिए मैं सुबह से उठकर के रात तक जितना बन पाता है इतना काम करता हूँ। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितनी तुमने आज मुझे शक्ति दी उसका 100% मैं सदुपयोग करूँ, 100% उसका प्रयोग करता हुआ जब पूरी शक्ति खत्म हो जाती है फिर मैं सोता हूँ, रात को जब सोता हूँ उतनी शक्ति फिर मिल जाती है, फिर दूसरे दिन से मैं काम पर जुट जाता हूँ।
आपने मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में काफ़ी क्रिटिकल अवधारणाएं रखी है, मगर आप वही कर रहे हैं उत्पादन जो मल्टीनेशनल कंपनी करती है, टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू तक, क्यों इतने सेक्टर में हाथ हाल रहे हैं?
मल्टीनेशनल्स की जो पॉलिसियां होती हैं उनका जो लक्ष्य होता है वह अपने लिए होता है, अपने वेल्थ के लिए होता है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। पतंजलि का पूरी तरह से जो लक्ष्य है, जो उसकी जो सोच है वो यह है कि देशवासियों को कम पैसे पर अच्छी चीज़ें मिले, वर्ल्ड क्लास चीज़ें मिले, किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य मिले, और उससे कोई भी आय होता है वह आय 100% समाज के लिए लगाए जाए, यह पतंजलि का लक्ष्य है। कोई भी कंपनी अपने आय को समाज के लिए नहीं लगाती है, वह कहीं ना कहीं जो समाज के लिए लगाना चाहिए था, पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए था, उसमें भी कई बार लोग हेराफेरी करते हैं। तो पतंजलि इसलिए औरों से अलग है क्योंकि यह देश के लोगों का विश्वास है पतंजलि, और उनके विश्वास के लिए काम करता है पतंजलि।
आपने कहा कि आप ऐसे चीप रेट में वैसा ही उत्पादन जो मल्टीनेशनल कंपनी कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव तुल्याते हैं?
ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी टीम जो है वो वॉलंटरी सेवाएं देती है। जैसे मैं कंपनी को पूरी तरह से देखता हूँ, हम किसी तरह की कोई सैलरी नहीं लेते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी की पूरी ऊर्जा लगी हुई है उसको संस्थान को बढ़ाने से लेकर के और इसको ब्रांडिंग से लेकर के एडवर्टाइजिंग तक का सारे कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में होता है। वह किसी भी प्रकार से एक भी पैसा कंपनी से नहीं लेते हैं।
आप भी नहीं लेते हैं?
नहीं, बिल्कुल हम किसी तरह से कोई सैलरी या कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं लेते हैं।
कितना यहाँ पे कितना लोग काम करते हैं आपके
संस्थान में? तो अभी लगभग हमारे पास पूरे पतंजलि आयुर्वेद में जो डायरेक्ट सेवाएं दे रहे हैं आज के दिन में करीबन 12-13 हज़ार लोगों की संख्या है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसकी संख्या दुगुने होने वाली है।
बाकी सैलरी नहीं लेंगे?
नहीं, बाकी तो सब सैलरी पर हैं। हम जो प्रोफेशनल्स ले आते हैं वो सैलरी पर रखते हैं, दूसरे कंपनियों से भी बेहतर भी सैलरी दे रहे हैं, परंतु जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ज़्यादा खर्चा होता है, जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उन लोगों के जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होते हैं, उस पर ज़्यादा खर्चा होता है, हमारे पास वो खर्चा नहीं है। दूसरा, हम लोग किसानों से डायरेक्ट परचेज करते हैं, जो बीच के बिचौलिए नहीं है। तीसरा, हमारे परचेजिंग वगैरह के सिस्टम में हमारी टीम बैठी हुई है, बैठ करके प्रॉपर ढंग से नेगोशिएशन करती है। ये सब ऐसे कारण हैं जिन कारणों से गुणवत्ता बढ़ती है और कॉस्ट कम आता है, और हम स्वयं निर्देशन और स्वयं निरीक्षण करते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी कभी डाउन नहीं जाती है।
आपका अब भविष्य का प्लान क्या है?
भविष्य में हम जो उत्पादों को हम बढ़ाएंगे और कुछ नए उत्पाद के लिए अभी R&D चल रहा है, रिसर्च को हम बढ़ावा देने वाले हैं, और साथ साथ में जो कल्टीवेशन वाला प्रोग्राम है किसानों को और फार्मर्स के लिए हम क्या बढ़िया कर सकते हैं उसके लिए योजना बना के हम काम करेंगे।
अब यहाँ भारत और नेपाल में तो आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ से बाहर आप ये यूरोप व अमेरिका में कितना का कारोबार है अभी, और प्लान क्या है उस पश्चिमा देशों में कारोबार बढ़ाने का?
अभी हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पर ज़्यादा हमारा फोकस है, इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए सोच रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने SCZ के अंदर भी एक यूनिट अभी हमने लगाई है और बाकी लगा रहे हैं, अभी वो काम चलेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग प्लानिंग करेंगे।
अंतिम में, आपका कभी कभी यहाँ पे बारंबार कंट्रोवर्सी में भी आते हैं, अभी भी फेक सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
ये बहुत पुरानी कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है, और जब हम लोग आंदोलन में थे और पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पीछे हम लोगों ने उनके गलत नीतियों के ऊपर हम लोगों ने जब प्रहार किया, तो उन लोगों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए षड्यंत्रपूर्ण ढंग से इस तरह के प्रयास किए, और वो प्रयास का पूरा देश जनता ने देख लिया, वो कुछ भी ना कर पाए और इस तरह की कोई बात नहीं थी और हमको किसी सर्टिफिकेट और किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने काम किया है जनता के बलबूते पर, जनता के विश्वास पर, और हमको काम करने के लिए हमारी क्षमताएं हमें चाहिए, बाकी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये एक सुनियोजित ढंग से बहुत बड़ा एक नकारात्मक छवि या लोगों का विश्वास को तोड़ने के लिए ऐसा असंभव प्रयास था, पर वो असंभव ही रहा क्योंकि लोगों का भरोसा और विश्वास बना रहा। इसके लिए हमें गर्व है और देशवासियों के प्रति हमें बहुत, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। इसके लिए
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण से बात कर रहे थे बीबीसी नेपाली सेवा के फणीन्द्र दहल। आर अश्विन ने कल 6 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पहली पारी को ध्वस्त किया तो आज 7 विकेट लेकर उसकी दूसरी पारी को भी रेत के महल की तरह ढाह दिया। इसके साथ ही भारत ने तीसरा टेस्ट मैच 321 रनों से जीत लिया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीती। आज की जीत पर आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
देश भर में आज विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज जैसे ही आर अश्विन ने न्यूजीलैंड का 10वां विकेट ट्रेंट बोल्ट के रूप में अपनी ही गेंद पर कैच पकड़कर झटका, वैसे ही भारत को 321 रनों से विजय मिल गई। इसके साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 475 रनों का लक्ष्य था, लेकिन इंदौर में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे ही दिन उसकी दूसरी पारी 44.5 ओवर में ही केवल 153 रनों पर ढेर हो गई। आर अश्विन ने 59 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पूरी सीरीज में 27 विकेट हासिल किए। आर अश्विन ने कल और आज यानी 2 दिनों में ही न्यूजीलैंड के 13 विकेट लिए, वो भी बल्लेबाजों के अनुकूल विकेट पर। इससे निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा। वैसे कल उन्होंने कहा था कि विकेट गेंदबाजों के पांव से बनने वाले निशानों से मिलने वाली मदद वाला नहीं है।
वो स्पिनिंग विकेट में खतरनाक है सर, ये इस विकेट में नहीं है, बट या जनरली ऑन टर्निंग विकेट्स व्हेन इट गोस स्ट्रेट इट्स प्रीटी हार्ड टू बॉल।
रविंद्र जडेजा ने 42 रन देकर 2 और उमेश यादव ने 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने 32, मार्टिन गप्तिल ने 29 और कप्तान केन विलियमसन ने 27 रन बनाए। इससे पहले आज भारत ने अपनी दूसरी पारी कल के स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन से आगे शुरू की और कल 1 रन बनाकर खेल रहे चेतेश्वर पुजारा ने आज अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक बनाते हुए नाबाद 101 रन बनाए। गौतम गंभीर ने भी वापसी का जश्न मनाते हुए 50 रन बनाए और जब भारत का स्कोर 3 विकेट पर 216 रन था तब भारत के कप्तान विराट कोहली ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। पहली पारी के आधार पर भारत को 258 रनों की बढ़त मिली थी, जिसके बाद जीत के लिए 475 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज घबराए दिखे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले में 13 विकेट अपने नाम करने वाले आर अश्विन बने। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला धर्मशाला में इसी सप्ताह रविवार 16 तारीख को खेला जाएगा। वैसे आज इंदौर में ही भारतीय टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम बने रहने के बाद टेस्ट गदा भी दी गई।
भारत की न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत, आर अश्विन ने फिर कमाल मचाया। और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में दशहरे के मौके पर रावण दहन में हिस्सा लिया। लखनऊ के ऐशबाग में इस हुए समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है, विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उन्हें जड़ से हटाने की जरूरत पैदा हुई है, जो आतंकवाद को पनाह देते हैं अब तो उन्हें भी बख्शा नहीं जा सकता है। सैमसंग का कहना है कि वो सुरक्षा को देखते हुए गैलेक्सी नोट 7 फोन का उत्पादन स्थायी तौर पर रोक रहा है। इससे पहले सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 खरीद चुके लोगों से आग्रह किया था कि वे अपना स्मार्टफोन तब तक बंद रखें जब तक कि कंपनी बदले गए डिवाइस में आग लगने की खबरों की जांच न कर ले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले हफ्ते होने वाले फ्रांस के दौरे को रद्द कर दिया है। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार रूस के लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में एलेप्पो में भारी हवाई हमले शुरू किए हैं। अफगान और नेटो सेना ने हेलमंद प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की है। ये बमबारी प्रांतीय राजधानी लश्करगाह में चरमपंथियों के हमले के बाद की गई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतने के लिए ही समय है। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।